अध्याय एक, युग वृत्त और युगीन काव्य प्रवृत्ति। घनानंद की कविता को समुचित रूप से समझने के लिए उनके युग की सामान्य पृष्ठभूमि और तत्कालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति पर संक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक है, तभी हम यह जान सकेंगे कि वे अपने युग में कितने ऊपर या नीचे हैं, अर्थात युगीन धारा में उन्होंने अपने को मिला दिया है या अपनी कोई अलग पहचान बनाई है। युग संदर्भ में देखें तो घनानंद रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का यह काल सन 1650 से 1850 ईस्वी तक लगभग 200 वर्षों का माना गया है। राजनीतिक दृष्टि से इस काल के आरंभ तक मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचकर निरंतर ह्रास की ओर उन्मुख हुआ है। शाहजहां की बीमारी और उसकी मृत्यु की अफवाह के कारण 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष का आरंभ इस वैभवशाली शासन के पतन के आरंभ का भी कारण बना। बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या कर औरंगजेब ने शासन की बागडोर संभाली। अपनी धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरपंथी नीतियों के कारण वह अधिकांश हिंदू राजाओं और जागीरदारों का विश्वास खो बैठा। उसका पर्याप्त समय धार्मिक राजनीतिक उपद्रवों के दमन में ही बीता। वह विस्तृत मुगल साम्राज्य को सुव्यवस्थित और सुशासित करने में सफल रहा, असफल हुआ। पुत्रों के प्रति अपने कड़े रुख के कारण वह उन्हें योग्य शासक नहीं बना पाया। फलस्वरूप उसके बाद मुगल साम्राज्य लगातार क्षीण होता गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में उसके पुत्रों के बीच भी सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ। उसके दूसरे पुत्र शाह आलम को राजगद्दी मिली, लेकिन वह अधिक समय तक जीवित न रह सका। सन 1712 ईस्वी में लगभग 60-70 वर्षों तक मुगल शासन निरंतर अस्थिरता की ओर बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसका प्रभाव केवल दिल्ली और आगरा तक ही सीमित रह गया। इस बीच जितने भी मुगल शासक आए वे अत्यंत अल्पकाल के लिए गद्दी पर बैठे। जिन्हें कुछ समय अधिक मिला भी वे शासन को सुव्यवस्थित करने की अपेक्षा विलासिता में ही अधिक डूबे रहे। मजबूत केंद्रीय सत्ता के पकड़ के अभाव में अनेक हिंदू और मुसलमान राजाओं, जागीरदारों आदि ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन अपनी इस स्वतंत्रता का उपभोग उन्होंने विलासिता में डूब कर किया। अपने विवेच्य कवि घनानंद का रचनाकाल प्राय यही समय रहा है। एक विलासी शासक मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में भी उन्होंने कुछ समय तक काम किया था। 1738 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण और 1757 ईस्वी तथा 1761 ईस्वी के अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के भी वे प्रत्यक्ष दर्शी रहे हैं। घनानंद के समसामायिक और प्रशंसक महात्मा चाचा हित वृंदावन दास ने तत्कालीन अव्यवस्था से खिन्न होकर मोहम्मद शाह और अमीर उमराओं के विषय में लिखा था, बेस्या मदपान करी छक गए अमीर जेते, रजतम की धार काढ़ बूढ़े को बिलौकिए, दिल्ली भई बिल्ली कटैला कुत्ता देखी डरी, भूलियो मोहम्मद शाह पहले अब काह ढोकिए, बाबर होमाई को चलाओ अब वंश भयो, ताको अब फैलियो शोक परजा करम ठोंकिए। घनानंद ग्रंथावली पृष्ठ संख्या 60-61। इससे स्पष्ट है कि मोहम्मद शाह के समय तक मुगल वंश और उसका शासन पतन की सीमा तक पहुंच चुका था कि वह लुटेरे आक्रमणकारियों से भी प्रजा की रक्षा में पूरी तरह असमर्थ था। राजनीतिक दृष्टि से पूरे रीतिकाल में प्राय यही स्थिति मिलती है। एक बार मुगल शासन की पूर्ण प्रतिष्ठा के बाद हिंदू राजाओं को अपनी खोई हुई शक्ति फिर से प्राप्त करने की इच्छा या आकांक्षा शेष नहीं रह गई थी। शिवाजी आदि कुछ इन्हें गिने राजाओं ने तथा आगे चलकर मराठा पेशवाओं के साथ मिलकर बुंदेलों ने इस ओर प्रयास अवश्य किया, लेकिन इन्हें भी कोई विशेष सफलता नहीं मिले। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य और सामंतगण प्राय हाथ पर हाथ रखे बैठे ही रहे। ऐसी निराशा और पराजय के मनोदशा में उन्होंने अपने उपलब्ध साधनों का उपयोग राग रंग और विलासिता में मग्न होने के लिए किया। विलासिता के अन्य अनेक उपकरणों के साथ ही उन्होंने कला की अन्यान्य विधाओं, नृत्य, संगीत, चित्र, काव्य आदि को भी अपने मनोरंजन का साधन बनाया। अपने शान शौकत और प्रतिष्ठा के लिए जिस प्रकार नर्तकी, वेश्याएं, गायक, चित्रकार आदि राज दरबार के आवश्यक अंग हुए, ठीक उसी प्रकार कवि भी। फलस्वरूप इस काल में बड़ी तेजी के साथ कवि वर्ग राजा श्रयों की ओर उन्मुख हुआ। रीतिकाल के प्रायः सभी कवि राजकवि बने। राजसभा में बड़प्पन की प्राप्ति ही उनके लिए परम उद्देश्य बन गया। यदि इस रासोन्मुख राजनीतिक सामाजिक वातावरण में राजदरबार विलासिता के प्रमुख अड्डे बन गए। सेना, सुरक्षा, प्रशासन के उपकरणों से हीन इन राजदरबारों में श्रृंगारिकता के लिए खुला अवकाश था। फलस्वरूप इस काल के काव्य में भी श्रृंगार को ही प्रमुखता मिली। राजनीतिक गिरावट के साथ ही इस युग का समाज भी घोर अधःपतन से ग्रस्त था। 14वीं शती के आसपास पतनोन्मुख भारतीय राजनीतिक सामाजिक जीवन एक विदेशी सांस्कृतिक सामाजिक विशेषताओं के मेले से कुछ शताब्दियों के लिए उत्थान की दिशा में गतिशील हुआ था, लेकिन 17वीं शती के अंत तक उस मिश्रण के गतिशील तत्व लुप्त होने लगे थे। वस्तुतः सामंती सामाजिक संरचना का यह काल राष्ट्रग्रस्तता की उस सीमा तक पहुँच चुका था जहाँ उसके विकास की सारी संभावनाएँ चूक गई थी। ऐसे ह्रासग्रस्त काल में राजा, राजन्य वर्ग तथा अन्यान्य संपत्तिशाली लोगों के अंतर्गत केवल ऊपरी आचार विचार, शान शौकत और रीति नीति ही प्रमुख हो जाते हैं, जिनके प्रति विपन्न और साधारण जनता में कोई रुचि नहीं रह जाती। ऐसे विषमताग्रस्त समाज में साहित्य एवं अन्यान्य कलाएँ वैभवशाली अभिजात वर्ग के इर्द गिर्द सिमट कर केवल कलागत बाह्य रीति नीति को ही महत्व देने लगती है। वे व्यापक लोक जीवन और उसकी वास्तविक आशा आकांक्षा से शून्य होकर रूढ़िबद्ध ऊपरी ढांचे को ही अधिक महत्वपूर्ण मान लेती हैं। रीतिकालीन अन्यान्य कलाओं में इस तथ्य को आसानी से देखा जा सकता है। तत्कालीन काव्य तो इसका ज्वलंत प्रमाण है। रीतिकालीन काव्य जिस रासग्रस्त सामंती समाज के देन था, उसमें श्रृंगार प्रधान साहित्य के लिए ही अधिक अवकाश था। विलासपूर्ण श्रृंगारयुक्तता तत्कालीन दरबारी वातावरण की देन थी। अपने श्रृंगारिक वृत्ति की अभिव्यक्ति के लिए इस काल के अधिकांश कवियों ने संस्कृत के पिछले खेवे के रासग्रस्त श्रृंगारिक साहित्य से भी प्रेरणा ग्रहण की। इसके साथ विभिन्न काव्यशास्त्री स्थितियों के संपादन के लिए इन कवियों ने जिन काव्यशास्त्री ग्रंथों को आधार बनाया, उनमें भी घोर श्रृंगार को ही प्रमुखता मिली थी। रस, नायिका भेद, अलंकार, छंद, नक्षिक वर्णन आदि के परिपाटी का विवेचन करने वाले ये पूर्ववर्ती ग्रंथ संस्कृत साहित्य के रासोन्मुख श्रृंगारिक उदाहरणों से भरपूर थे। पूर्ववर्ती कृष्ण भक्ति से संबद्ध हिंदी काव्य में भी इस लौकिक श्रृंगार के समावेश की पर्याप्त गुंजाइश थी। इस प्रकार युगीन स्थिति परिस्थिति के साथ ही पूर्ववर्ती परंपरा ने भी रीतिकालीन श्रृंगारिकता को बढ़ावा दिया। यह सही है कि श्रृंगार के साथ ही इस काल में भक्ति एवं वीर रस का भी पर्याप्त साहित्य लिखा गया, लेकिन उसमें भी हमें ताजगी एवं जीवंतता के स्थान पर बाह्य आचार एवं रीति की ही प्रधानता मिलती है। भक्ति के क्षेत्र में तुलसी और सूर्य की ताजगी, कबीर की जीवंतता का यहाँ सर्वथा अभाव है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस काल का अभिजात वर्ग जिस प्रकार जीवन में बाह्याचार और रीतियों की प्रमुखता देने लगा था, ठीक उसी प्रकार छाया माया में पलने वाले कवि भी अपने काव्य में बाह्याचारों को ही प्रधानता देने लगे। फलस्वरूप इस काल का समूचा साहित्य रीति प्रधान हो गया। हमारे विवेच्य कवि घनानंद भी इसी युग की देन थे। अपने युग के सामाजिक विधि निषेधों के प्रति विद्रोह के साथ ही उन्होंने काव्यगत रीतियों का भी किंचित विरोध अवश्य किया, लेकिन सामंती मानवीय सामाजिक संबंधों की रूढ़िबद्ध नैतिकता से वे अपने को पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाए। युगीन प्रवृत्ति के प्रभाववश इन्होंने भी श्रृंगार को ही अपने काव्य का विषय बनाया। युग की सीमाओं से किंचित बंधकर भी घनानंद ने श्रृंगार के रीतिबद्ध स्वरूप की रीतिबद्ध ढंग से अभिव्यक्ति नहीं की है। अपने स्वच्छंद व्यक्तित्व और निजी परिवेश के कारण इनमें तत्कालीन सामाजिक एवं काव्यगत रीतियों से मुक्ति का प्रयास दिखाई देता है, इसलिए इन्हें रीति मुक्त कवि की संज्ञा दी गई है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल के श्रृंगारिक कवियों को उनकी रचना प्रकृति के आधार पर तीन वर्ग में विभक्त किया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इनमें पहले वर्ग के अंतर्गत चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतिराम, पद्माकर आदि अधिकांश रीतिकालीन कवि आते हैं। ये सभी पूर्णतः रीतिबद्ध कवि हैं। इन्होंने काव्यशास्त्र की बधी बधाई परिपाटी पर केवल काव्य रचना ही नहीं की है, परन शास्त्र स्थिति संपादन का भी प्रयास किया है। अतः इन रीतिबद्ध के साथ लक्षणकार या लक्षणबद्ध रचनाकार की संज्ञा भी दी जाती है। दूसरे वर्ग के कवि भी एक प्रकार से रीतिबद्ध ही हैं, लेकिन उन्होंने लक्षण ग्रंथ न लिखकर केवल लक्ष्य ग्रंथ ही लिखा है। इसके अंतर्गत बिहारी, रसनिधि आदि कवि आते हैं। कवियों की दृष्टि से इस प्रकार के रचनाकारों का एक वर्ग नहीं बन पाता। हाँ, रचनाओं की दृष्टि से रीतिकाल में लिखी गई सभी सत्संज्ञाएं इस श्रेणी में आ जाती हैं। इस प्रकार की रचनाएं अपने बाह्याकार में तो रीति निरूपक नहीं लगती, लेकिन बनावट बुनावट के साथ ही इनकी मूल चेतना तत्कालीन काव्य रीतियों से ही निर्मित है। इसलिए इनके रचयिताओं को रीति सिद्ध कवि कहा गया है। तीसरे वर्ग के अंतर्गत रीतिमुक्त कवि आते हैं, जिनमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन कवियों ने रस, अलंकार, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन की बदी बधाई पर पाटी का परित्याग कर मुक्त भाव से श्रृंगार काव्य रचा है। इन्होंने भाव एवं शिल्प दोनों ही क्षेत्रों में रीति के बाह्य बंधनों को केवल अस्वीकार ही नहीं किया है, वरन स्थान स्थान पर उसका विरोध भी किया है। इस संबंध में रीतिमुक्त ठाकुर का स्पष्ट कहना है, सी खिलीनो बीन मृग खंजन कमल नयन, सी खिलीनो जस ओ प्रताप को कहानी है, सी खिलीनो कल्प बिच कामधेनु चिंतामणि, सी खिलीनो मेरे और कुबेर गिरी आनो है। ठाकुर कहत या कि बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूली कहूँ बधियत बानो है, डेल्स बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। इस कवित में ठाकुर ने रीतिबद्ध कवियों की रचना प्रकृति का ही उद्घाटन नहीं किया है, वरन इनकी रूढ़िवादी मनोवृत्ति का भी उपहास किया है। रीतिबद्ध कवियों ने कवि वर्णन परिपाटी में गिनाई गई बातों को सीख कर काव्य रचना की थी, इसलिए उनका काव्य शास्त्र के चौखटे में आबद्ध हो गया। कवि शिक्षा ग्रहण कर लोग कवि बनने लगे थे और उन्हें राज्यसभा में आदर भी मिलने लगा था। इस प्रकार कवि कर्म खेल या क्रीड़ा कौशल की तरह अभ्यास सिद्ध कार्य बन गया था। फलस्वरूप अंतःप्रेरणा और आत्मानुभूति के समावेश के लिए उसमें बहुत कम अवकाश रह गया था। रीतिबद्ध कवियों के इस मनोवृत्ति पर कटाक्ष करते हुए घनानंद ने लिखा है, यो घन आनंद छावत भावत जान सजीवन और ते आवत, लोग हैं लाग कवित्त बनावत मोहितो मोर कवित्त बनावत। घनानंद ग्रंथावली पृष्ठ संख्या 75। इस सवैये में घनानंद ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि लोग अर्थात रीति कवि लगकर जोड़ तोड़कर कविता बनाते हैं, किंतु मैंने अपनी कविता का नहीं वरन मेरी कविता ने ही मेरा निर्माण किया है। तात्पर्य यह कि घनानंद का काव्य उनकी जीवनानुभूति का सहज स्वच्छंद प्रकाशन है। उसका मूल स्रोत सुजान और उनका अपना पारस्परिक संबंध है। वस्तुतः घनानंद ने अपने काव्य में आदि से अंत तक अपने और सुजान के संबंधों को ही दोहराया है, इसलिए वे अपने युग के अधिकांश कवियों से अलग दिखाई देते हैं। इस तथ्य को लक्ष्य कर घनानंद के प्रशस्तिकार वजनाथ ने लिखा है, जग की कविताई के धोखे रहे यहाँ प्रवीणन की मति जाति जकी, समझे कविता घनी आनंद की ये आँखें नेह की पीर तकी। जग की कविता से यहाँ रीतिबद्ध साधारण श्रृंगारिक रचना से तात्पर्य है, जिससे घनानंद की कविता को भिन्न बताया गया है। यह भिन्नता ही आँखें नेह की पीर तकी के माध्यम से व्यंजित हुई है। इसका अभिप्राय है कि घनानंद की कविता को वही समझ सकता है जो हृदय की आंखों से प्रेम की पीड़ा को देखने में समर्थ रखता हो। हृदय की आंखों का तात्पर्य है आत्मानुभव। यहाँ ब्रजनाथ ने आत्मानुभूति के तत्व के आधार पर घनानंद को अपने युग के अन्य कवियों से पृथक सिद्ध किया है, लेकिन यह भिन्नता केवल आत्मानुभूति के स्तर तक ही सीमित न रहकर भाव विधायक कल्पना, भाषा एवं शिल्प की योजना से भी आसानी से देखी जा सकती है। घनानंद ने अपने निजी अनुभव जगत को समझने के लिए हमें उनके जीवन वृत्त की ओर दृष्टिपात करना पड़ेगा।